दिन भर 24 अक्टूबर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदर। समाजवादी पार्टी में चल रहा राजनीतिक ड्रामा अपने चरम पर, समाधान का दूर दूर निशान नहीं।
मैं नेताजी यही समझता था कि आप जो कह रहे हो वो आप दिल से नहीं कह रहे हो। मैं यही समझता रहा कि वही आपने जो कह दिया मैं नहीं मानता, मैं उसको ऐसे टाल देता था बात को कि नेताजी हैं, पिताजी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी पार्टी है, वो कह सकते हैं।
उड़ीसा आंध्र प्रदेश सीमा पर पुलिस मुठभेड़ में 24 माओवादियों की मौत।
लड़का शहीद हुआ है और 14 रेड बुलेट हमारे पास पहुंच गया है, दस अभी पहुंचने वाला है, कितना इनपुट है अभी, अपन चल रहा है, अपन चल रहा है।
और होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच चल रही कलह पर फैसला लेने के लिए पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने अहम बैठक बुलाई। पहले अखिलेश यादव भावुक होकर बोले और साफ किया कि वो कोई नई पार्टी नहीं बनाएंगे और न ही पार्टी छोड़कर कहीं जाएंगे। वहीं मुलायम सिंह ने शिवपाल यादव और अमर सिंह की तारीफों के पुल बांध दिए। बैठक के बाद किसी तरह की सुलह की खबर नहीं आई। मुंबई की ऐतिहासिक हाजी अली दरगाह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि दरगाह में महिलाएं फिर से प्रवेश कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हाजी अली ट्रस्ट को 4 हफ्ते का समय दिया है। 5 साल पहले दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। कहा गया था कि पीर की दरगाह में महिलाओं की उपस्थिति गुनाह है। इराक की विशेष सेना का कहना है कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट से चल रही लड़ाई में मोसुल के पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। अमरीका के नेतृत्व वाले गठबंधन का कहना है कि मोसुल की लड़ाई की शुरुआत से ही उन्होंने हवाई अभियान में तेजी दिखाई है। एक प्रवक्ता का कहना है कि 18 सुरंगों और कई कार बमों के साथ चरमपंथियों के 130 से ज्यादा ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं। ये आईएस के खिलाफ 2014 से शुरू किए गए हवाई हमलों में अब तक के सबसे बड़े हमले हैं। संयुक्त राष्ट्र की बाल समिति यूनिसेफ के इराक के प्रतिनिधि पीटर हॉकिंस का कहना है कि जिन लोगों को जबरदस्ती इलाका छोड़ना पड़ रहा है, हमने उन लोगों के लिए तैयारी कर ली है। हमें जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक 4,000 से ज्यादा लोग मोसुल और उसके आसपास के गांव से पलायन कर चुके हैं। यूनिसेफ ने उनके लिए पानी और सफाई की व्यवस्था की है। हसन चाम, कायरा और उत्तरी जिलेकान, जहां भी आपातकालीन स्थिति होगी वहां सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सभी सुविधाएं मिलें। तो जो लोग विस्थापित होकर आएंगे उन्हें तुरंत 7 दिनों के लिए पानी और साफ सफाई की व्यवस्था मिलेगी। इसके बाद वो शिविरों में जा पाएंगे जहाँ सारी सुविधाएं होंगी। ये थे पीटर हॉकिंस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तरी श्रीलंका में 2,000 अल्पसंख्यक तमिल छात्रों ने उन छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया जो पिछले हफ्ते जाफना में पुलिस फायरिंग के दौरान मारे गए थे। जाफना में पिछले हफ्ते पुलिस ने मोटरसाइकिल से जा रहे 2 लोगों पर गोली चलाई थी। इस मामले में 5 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। छात्र संघ का कहना है कि वो जाफना विश्वविद्यालय में तब तक कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे जब तक अधिकारी उन गिरफ्तार 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने को तैयार नहीं होते। श्रीलंका का उत्तरी प्रांत तमिल बहुल क्षेत्र है और तमिलों का कहना है कि वो अभी तक उस भेदभाव और उपेक्षा के शिकार हैं जिसके चलते सालों पहले गृह युद्ध छिड़ा था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत एक बार फिर उत्तर प्रदेश से ही। समाजवादी पार्टी में पिछले करीब 1.5 महीने से चल रहा राजनीतिक ड्रामा आज अपने चरम पर था। पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक में भावनाओं के जमकर तीर चले, गिले शिकवे जाहिर किए गए, आरोप प्रत्यारोप हुए और नौबत यहां तक पहुंची कि मंच पर बैठे बड़े नेताओं तक में हाथापाई की नौबत तक आ गई। हालांकि दफ्तर के बाहर अखिलेश और मुलायम के समर्थकों में मारपीट भी हो गई, लेकिन विवाद का कुछ नतीजा नहीं निकला। पूरे घटनाक्रम पर सुनिए समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
ये आवाजें बता रही थीं कि आज की बैठक में भले ही दोनों पक्षों के लोग शामिल हो रहे हों, लेकिन खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि ये पटने वाली नहीं है। बैठक में तमाम कयासों को धता बताते हुए अखिलेश यादव भी पहुंचे और शायद उन्होंने अपनी सारी बात कह देने के लिए ही यहां आने का फैसला किया था। लंबे भाषण के दौरान कई बार वो इतने भावुक हुए कि लगभग रो पड़े।
मेरा आपसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ अगर साजिश होगी और आपकी पार्टी के खिलाफ साजिश होगी तो मेरी मजबूरी है बोलना।
अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने तमाम नियुक्तियां और बर्खास्तगी मुलायम सिंह के कहने पर की। वो यहां तक कह गए कि गायत्री प्रजापति मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन सबसे ज्यादा उनका गुस्सा फूटा अमर सिंह पर।
मैं यही समझता था कि आप जो कह रहे हो वो आप दिल से नहीं कह रहे हो। मैं यही समझता रहा कि वही आपने जो कह दिया मैं उसको ऐसे टाल देता था बात को। नेताजी हैं, पिताजी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी पार्टी है वो कह सकते हैं, लेकिन उस दिन जो कुछ आपने कहा मुझे बहुत दुख हुआ था उस दिन। और जब रामसभा चाचा का फोन आया कि नेता ने कहा कि तुम्हें हटा दो वहां प्रदेश अध्यक्ष से, मैंने कहा चाचा एक मिनट मत सोचना आप हटा देना, और हटने के बाद मैंने केवल इतना कहा कि मुझे चिट्ठी दे देना जिससे मैं हटूंगा। उन्होंने मुझे चिट्ठी दी और मैंने लोक प्रधानमंत्री जी के व्यवहार छीने, मैंने छीने उनके व्यवहार, और मैंने इसलिए छीने क्योंकि 3 घंटे वहां अमर सिंह आपके पास बैठा था।
मंच पर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव भी मौजूद थे। मुलायम सिंह ने अखिलेश को नसीहत दी कि वो चाचा से गले मिलें और अखिलेश ने वैसा किया भी, लेकिन मंच पर ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, यानी लोगों का आपसी विवाद वहां साफ तौर पर दिखा। बाद में पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी बोले, लेकिन ऐसा लगा कि वो अखिलेश की भावनाओं में बहे नहीं बल्कि शिवपाल यादव और अमर सिंह के प्रति प्रेम उनके भीतर काफी गहरा है। मुलायम सिंह ने शिवपाल को संघर्ष का साथी और अमर सिंह को भाई जैसा बताया। उधर इस बैठक से ठीक पहले अखिलेश और शिवपाल के कथित समर्थकों के बीच जमकर संघर्ष हुआ और हाथापाई की नौबत तक आ गई। वहीं पार्टी का आम कार्यकर्ता अभी भी ये नहीं समझ पा रहा है कि पार्टी में हो क्या रहा है।
उत्तर प्रदेश में हम टिकट ऐसे लोग बांटे जो गांव खलियान जिसको जनता लाइक कर रही हो, जो किसान लाइक कर रही हो, जो हमारा चुनाव जीत क्या सके, ऐसे लोगों को नहीं जिनको मीडिया भी और जनता भी ना पसंद करता हो, माफिया गुंडा क्रिमिनल।
हिंदुस्तान के सबसे बड़े समाजवादी नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ हैं, जब तक नेताजी हैं तब तक हम लोगों की कोई टेंशन नहीं।
समाजवादी पार्टी को 4.5 साल की सरकार में बेईमानों ने, दलालों ने इतना लूटा कि समाजवादी पार्टी के असली कार्यकर्ता दुखी हैं।
बहरहाल जानकारों का कहना है कि इस बैठक में न तो कोई सुलह समझौता होना था और न ही हुआ, लेकिन दिन भर ये चर्चा जरूर हवा में तैरती रही कि मुख्यमंत्री किसी भी समय राज्यपाल से मिलकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
थोड़ी देर पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक अंबिकानंद सहाय से बात की और पूछा कि उत्तर प्रदेश में हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं या अभी भी कुछ गुंजाइश दिखती है उन्हें।
देखिए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो पहुंच गया है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस शक्ल में समाजवादी पार्टी आज नजर आ रहा है उस शक्ल में लंबा चल ही नहीं सकता है, और दो खेमे में जो बची हुई पार्टी दिख रही है सिर्फ फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन दोनों ग्रुप अपनी अपनी राह पे चल रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन इस सिलसिले में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अखिलेश यादव को पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उन लोगों को झटका लगा है इस मायने में कि आज कुछ भी नया नहीं हुआ है। शिवपाल जी के साथ मुलायम सिंह पहले भी खड़े थे जोरदार ढंग से, आज भी खड़े हैं। अमर सिंह के साथ वो पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और साथ साथ सच्चाई ये भी है कि अखिलेश यादव जिस तरह अमर सिंह के खिलाफ थे आज भी वही हैं। कहने का मतलब आज ऑप्टिक्स में हर चीज नया तो जरूर नजर आया, पॉलिटिक्स वही का वही है। जी
अंबिकानंद जी, आप तो बहुत वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बताएं कि क्या अभी भी स्थिति को सैल्वेज किया जा सकता है आपकी नजर में?
मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। बेसिकली ये जनरेशनल वॉर है और हर युग हर काल में ये होता रहा है। अब नई जनरेशन को टेक ओवर करना है और जिस हालात में पार्टी आज खड़ी है उस शक्लो सूरत पे आगे नहीं बढ़ सकती है, तो इसमें बदलाव अवश्यम भावी है। अगर बदलाव स्वतः नहीं होगा तो पार्टी जो टूटी हुई है वो फॉर्मलाइज हो जाएगी। लेकिन इस सिलसिले में हम लोगों को और BBC के सुनने वालों को ये बात याद रखना चाहिए कि पिछले 50 वर्षों में समाजवादी आंदोलन 35 बार टूट चुका है। आपको चंद नाम मैं गिनाता हूँ, उनको याद रखिए और सब चीज याद आ जाएगा। प्रसोपा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संसोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल, लोक दल अ, लोक दल ब,
अनगिनत
दल च।
ये सिर्फ एक संभावना की बात, हम लोग तरह तरह के राजनीतिक कयास लगाते हैं, लेकिन एक कयास ये भी सही, अगर मुलायम सिंह खुद टेक ओवर करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तब शायद कुछ हालत बेहतर हो।
देखिए, ये करना था तो 3 साल पहले करना था, अब इसकी संभावना बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देती है, इस कारण से कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल भी प्रॉब्लम सामने है। देखिए, जैसे जीतन राम मांझी को बिहार में वो मुख्यमंत्री थे और पार्टी से हटा दिया गया था, नीतीश कुमार जी ने हटा दिया था, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, वो मुख्यमंत्री बने रहे। तो मुख्यमंत्री तभी हट सकते हैं, या तो खुद इस्तीफा दे और या फिर गवर्नर एक व्यू ले और कहे कि नहीं मेजॉरिटी टेस्ट करो, और वो भी उनके साथ दल के लोग नहीं हो, तब वो हारे और फिर राज्यपाल के खाते में गेंद जाती है। कॉम्प्लिकेटेड मसला है, अब मुलायम सिंह नहीं कर सकते कुछ। मेरी नजर में अब वक्त हाथ से निकल चुका है और चुनाव मुश्किल से 3 महीने के बाद होना है, तो मुलायम सिंह घर के गार्जियन है, पिता है, इसीलिए आपने देखा होगा आज भरसक उन्होंने प्रयास किया सारे चीजों के बावजूद कि पार्टी एक रहे, परिवार एक रहे। लेकिन सच्चाई है कि एक तो है नहीं, लेकिन उनका पिता की तरह एक प्रयास है और वो चल रहा है।
ये थे टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक अंबिकानंद सहाय। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बीच सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद को कहां खड़ा पाते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बगावत का बिगुल बजाकर अखिलेश यादव ने खुद का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश की है। जानकारों को यह भी लगता है कि अगर अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की नसीहत पर सबको साथ लेकर चलते हैं तो वो राजनीतिक हाशिए पर पहुंच जाएंगे। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रावी।
समाजवादी पार्टी में हालात कुछ मुगलिया सल्तनत के उस दौर जैसे हैं जब अकबर हिंदुस्तान के शहंशाह हुआ करते थे, ऐसा मानना है राजनीतिक विश्लेषकों का, जिनको सोमवार को समाजवादी पार्टी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के तेवर में बगावत की बू आ रही है। बैठक के दौरान पार्टी के सर्वे सर्वा यानी मुलायम सिंह यादव द्वारा पुत्र को सार्वजनिक फटकार और अखिलेश यादव की चाचा से हुई नोकझोंक से समझ में आने लगा कि बीच बचाव के बावजूद समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद जोशी कहते हैं कि अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य उनकी बगावत में ही है। वो कहते हैं,
तो यही कह रहे हैं कि अपने पिता की विरासत मेरे पास है। इस परिवार में कई प्रकार के उत्तराधिकारी, एक तो शिवपाल यादव उत्तराधिकारी के रूप में दिख ही रहे हैं, दूसरे मुलायम सिंह के दूसरे पुत्र जो हैं को उत्तराधिकारी बनाने की बात सुनाई पड़ रही है। राजनीतिक आधार तो उनका कुछ नहीं है, उनके मुकाबले तो अखिलेश का आधार अपेक्षाकृत बेहतर है। पिछले 5 साल में, 4.5 साल में अखिलेश ने कुछ जमीन तो बना ही ली है। अखिलेश मतलब पार्टी के भीतर के जो युवा वर्ग है उसको उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मुलायम सिंह अपेक्षाकृत पुराने जो एक ऐसे लोगों के साथ जैसे अमर सिंह या जिनका जिनका जिनकी इमेज बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वालों को लगता है कि जिन बिंदुओं को लेकर अखिलेश यादव ने विरोध के स्वर बुलंद किए हैं वो उनके पक्ष में जा सकते हैं। विश्लेषकों को ये भी लगता है कि अमर सिंह और मुख्तार अंसारी का विरोध करने से अखिलेश यादव ने युवाओं और आम लोगों के बीच अपनी छवि बेहतर बनाने की कोशिश की है। प्रमोद जोशी को लगता है कि अखिलेश यादव का आधार ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है क्योंकि ज्यादातर विधायक और मंत्री उनके साथ दिख रहे हैं।
क्योंकि मुलायम सिंह भी व्यतीत हैं, अब
जी
अतीत की बातें हो गई हैं, आगे मुलायम सिंह कोई बहुत बड़ा भविष्य नहीं है और स्वास्थ्य भी उनका कोई इतना अच्छा नहीं है कि वो आगे चला ले जाए। अखिलेश को भविष्य क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, ये सवाल है। क्या अखिलेश कुछ जरूरत से ज्यादा बादशाह अकबर के सामने जिस तरह सलीम चेहरे हो गए थे कुछ वैसा ही होने जा रहा है, इसलिए लेकर के समझ में नहीं आया आखिर वो कौन सी बातें हैं जिसके कारण वो चुनौती दे रहे हैं।
मगर कुछ और जानकारों को लगता है कि अखिलेश यादव के पीछे संगठन में मजबूत नेता नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग शिवपाल यादव के साथ ही दिख रहे हैं। इनमें मुलायम सिंह यादव भी शामिल हैं, जबकि अखिलेश यादव के लिए संगठन में सिर्फ रामगोपाल यादव का समर्थन उतना मायने नहीं रखता। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश मानते हैं कि इतनी कटुता के बावजूद मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने एक दूसरे के लिए अभी भी जगह रखी हुई है।
देखिए, ये दोनों लोगों ने, बाप बेटे ने, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों ने एक दूसरे के लिए स्पेस छोड़ रखा है, ये अजीब बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देर सबेर फैसला करना होगा, क्योंकि चुनाव में अगर यही स्थिति रहती है तो इस पार्टी की परफॉर्मेंस कहीं से भी अच्छी नहीं रहेगी। एक गहरी निराशा, एक गहरा अंतर्द्वंद के साथ कोई भी विजेता, कोई भी जो योद्धा है वो विजेता नहीं बन सकता।
लेकिन अखिलेश यादव के करीबी लोगों का मानना है कि मुलायम सिंह यादव के कहने पर अगर वो सबको साथ लेकर चलते हैं तो वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले जाएंगे, इसलिए अखिलेश यादव के लिए अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने का एक ही रास्ता है और वो है बगावत। हालांकि शिवपाल यादव के गुट का कहना है कि पूरे मामले में मुलायम सिंह यादव शाहजहां जबकि अखिलेश औरंगजेब की भूमिका में है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। दक्षिणी उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के आंध्र प्रदेश से सटे इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 24 माओवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ में मारे जाने वाले सभी माओवादियों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, लेकिन उड़ीसा पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मरने वालों में 7 महिला माओवादी और कुछ चोटी के माओवादी नेता शामिल हैं। भुवनेश्वर से संदीप साहू की रिपोर्ट।
आंध्र पुलिस के ग्रेहाउंड दस्ते और उड़ीसा पुलिस की संयुक्त टीम और माओवादियों के बीच ये मुठभेड़ आज सुबह मालकानगिरी जिले के भेजिंगी जंगलों में हुआ। उड़ीसा पुलिस सूत्रों के अनुसार पूर्व सूचना के आधार पर इस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था, जब माओवादियों ने अचानक सुरक्षा कर्मियों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की जिसमें 24 माओवादी मारे गए। बीबीसी से फोन पर बातचीत के दौरान मुठभेड़ में 24 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए मालकानगिरी के एसपी मित्र भानु महापात्र ने बताया,
लड़का शहीद हुआ है और 14 डेडबॉडी हमारे पास पहुंच गया है, 10 अभी पहुंचने वाला है। कितना इनपुट है अभी? अपहरण चल रहा है।
इससे पहले उड़ीसा के पुलिस महानिदेशक केबी सिंह ने भुवनेश्वर में पत्रकारों से कहा था कि मारे जाने वाले माओवादियों में चोटी के नेता कॉमरेड उदय शामिल हैं, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उदय आंध्र उड़ीसा बॉर्डर जोनल कमिटी के वरिष्ठ नेता उदय हैं या कोई और उदय है। मुठभेड़ में आंध्र ग्रेहाउंड के जवान मोहम्मद अबू बकर की भी मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार मालकानगिरी के दुर्गम भेजिंगी जंगल में चल रहे एक माओवादी कैंप के बारे में पुलिस को पक्की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर आंध्र और उड़ीसा पुलिस की संयुक्त टीम ने कल रात कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया था। यह अभियान आंध्र की तरफ से शुरू हुआ क्योंकि जहां पर मुठभेड़ हुआ वहां उड़ीसा की ओर से स्थल पथ से पहुंचना संभव नहीं है। इसका कारण है ये इलाका चित्रकुंडा में बिजली उत्पादन के लिए बने विशाल जलाशय के उस पार है। कट ऑफ एरिया के नाम से जाना जाने वाला ये इलाका हमेशा से माओवादियों का गढ़ रहा है और सुरक्षा कर्मियों को यहाँ भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सन 2006 में इस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद एक मोटर बोट पर वापस लौट रहे ग्रेहाउंड दस्ते पर माओवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें नाव पर सवार सभी 38 जवान मारे गए थे। 2008 में इसी इलाके में माओवादियों ने एक पुलिस वैन को विस्फोट से उड़ा दिया था, जिसमें 17 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई थी। 2011 में इसी इलाके में माओवादियों ने मालकानगिरी के तत्कालीन जिलाधीश आर विनिल कृष्णा को 9 दिन तक बंधक बनाकर रखा था। आज का मुठभेड़ पहला मौका था जब सुरक्षा कर्मियों ने इस इलाके में माओवादियों को मात दिया।
ये थी संदीप साहू की रिपोर्ट। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। उत्तरी फ्रांस में बड़े पैमाने पर प्रवासियों को एक शिविर से बाहर निकाला जा रहा है। इस शिविर को जंगल के नाम से जाना जाता है और इसे ढाए जाने का समय पहले से तय था। हजारों प्रवासियों को कैले के बंदरगाह से फ्रांस की दूसरी जगहों पर ले जाया जाएगा, जहां वो शरण पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस कार्रवाई को 12,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारियों की देखरेख में अंजाम दिया जा रहा है। सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि कुछ प्रवासी दूसरी जगह ले जाने का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रिटेन में शरण पाने के अपने दावे पर आमादा हैं। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ अमर शर्मा।
उत्तरी फ्रांस के कैले शहर में प्रवासियों का एक शिविर है और इसका नाम है जंगल। हजारों प्रवासियों को इस शिविर से बाहर निकाला जा रहा है और इस पूरे अभियान की देखरेख करीब 12,000 पुलिसकर्मी और अधिकारी कर रहे हैं। इस जंगल में कम से कम 7,000 लोगों को रहने की जगह मिली हुई थी, जहां वे बहुत गंदे वातावरण में रह रहे थे। शरणार्थियों को कैले के बंदरगाह ले जाकर कोच में भरा जा रहा है, जहां से उन्हें फ्रांस के अन्य हिस्सों में ले जाया जाएगा और इसके बाद वे शरण पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। करीब 60 कोच अपने सफर पर निकल चुके हैं। प्रवासियों ने कतार में लगकर इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। कुछ प्रवासियों ने अपनी बात कुछ इस तरह बयां की। मैं ब्रिटेन जाने का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि जंगल में रहने वाले 2 साल 18 महीने से ब्रिटेन जाने की राह देख रहे हैं। वहां सब कुछ है, मैं पहले भी वहां जा चुका हूं, इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूं। यहाँ जंगल में जिंदगी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से शहर जाना चाहता हूँ ताकि कुछ बेहतर हो सके। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं एक अलग जिंदगी देखना चाहता हूँ। यहाँ जंगल की जिंदगी अच्छी नहीं है। ये थे शरणार्थी शिविर जंगल में रह रहे कुछ प्रवासियों के शब्द। इस शिविर को कल से ढहाया जाना शुरू किया जा सकता है। ब्रिटेन ने इस शिविर में अकेले रह रहे 1300 बच्चों को अपने यहाँ आने की अनुमति दे दी है। ब्रिटेन में बिना कोई पारिवारिक संबंध वाला पहला समूह पहुँच चुका है। डब्स संशोधन नियम के आधार पर ये आए हैं और इस नियम के मुताबिक सबसे कमजोर लोगों को पहले शरण दी जाती है। प्रवासी कल्याण समूह ओबर्ग डेस माइग्रेंट्स के फ्रैंकोइस ग्वेनोक का कहना है कि सिर्फ शिविर को तोड़ देने से समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कैले या आसपास के इलाकों में करीब 18 सालों से शरण लिए हुए हैं। ग्वेनोक ने कहा कि सरकार हर बार शिविर तोड़ देती है, लेकिन फिर कोई नया शिविर बन जाता है। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान लंदन कर सकता है।
कई लोगों के परिवार ब्रिटेन में हैं और कोई ना कोई नौकरी उनका इंतजार कर रही है। ब्रिटिश सरकार अकेले रह रहे 200 या 300 बच्चों को लेने के लिए तैयार हो गई है। ये ठीक है, लेकिन काफी नहीं है।
प्रवासी कल्याण समूह ओबर्ग डेस माइग्रेंट्स के फ्रैंकोइस ग्वेनोक के शब्द। फ्रांस के आंतरिक मंत्री ने कहा कि पूरी कार्रवाई तयशुदा और शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है और नियंत्रण में है। इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि कुछ प्रवासी जाने से इनकार करेंगे, क्योंकि वे ब्रिटेन जाना चाहते हैं। इसलिए ऐसी आशंका है कि हफ्ते के आखिर में इनकी पुलिस के साथ दोबारा झड़प हो सकती है।
उत्तरी फ्रांस में प्रवासियों को एक शिविर से बाहर निकाला गया।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश जोशी और सिमरनप्रीत कौर।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और मेरे साथ हैं सुमिरनप्रीत कौर।
जी नमस्कार।
और हमारे श्रोताओं, आपको इंतजार रहता है कि हर सोमवार और हर बृहस्पतिवार को हम आपकी चिट्ठियों के साथ यहाँ आते हैं। कभी मैं आता हूँ, कभी मेरे दूसरे साथी आते हैं, लेकिन हमेशा जितना इंतजार आपको रहता है उससे कहीं ज़्यादा इंतजार हमें रहता है कि हम आपकी चिट्ठियाँ पढ़ें, आपके दुख सुख, आपकी तारीफ और आलोचना, वो सब हम तक पहुंचती है और उसी के हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि आप तक अपनी बात पहुंचाएं। तो आज आप आलोचना कर रही हैं या तारीफ वाली चिट्ठी ले रही हैं? आप
शुरुआत तारीफ से कर रही हूं। अच्छा, और फिर आलोचना की बारी।
फिर आलोचना करेंगे।
जी बिल्कुल। ये खत लिखा है जगत सिंह धामी ने पिथौरागढ़ से, जो लिखते हैं कि बीबीसी हिंदी परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
आपको भी नमस्कार धामी जी।
जी उनकी एक रिक्वेस्ट है कि रेहान फजल जी से अनुरोध है कि भविष्य में संभव हो तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी पर विवेचना जरूर प्रस्तुत करें।
जी बिल्कुल, वो मुझे लगता है कि इस पर वो काम खुद ही शुरू कर रहे होंगे, क्योंकि रेहान फजल को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि किस व्यक्तित्व पे उनको विवेचना करनी चाहिए या किस पे नहीं करनी चाहिए, उनकी नज़र में ये ज़रूर होगा विषय, लेकिन आपने लिखा है तो हम उन तक ये आपकी बात पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए धामी जी।
जी, अब बारी इंडिया बोल की। ये खत लिखा है नीतीश कुमार यादव ने भोजपुर से, जो लिखते हैं कि शनिवार 8 अक्टूबर को इंडिया बोल, जिसे मोहनलाल शर्मा जी ने प्रस्तुत किया, उसको सुनने में काफ़ी तकनीकी दिक्कतें आई। मुद्दा काफ़ी दमदार था, लेकिन उसमें शामिल ओम पुरी और पाकिस्तान के उर्दू के लेखक अली अकबर नातिक जो हैं, उन्होंने इसको महत्वहीन बना दिया।
महत्वहीन बना दिया, इसलिए आप कह रहे हैं। पहले तो धन्यवाद कि आपने जिला भोजपुर बिहार से चिट्ठी लिखी है नीतीश कुमार यादव जी। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि तकनीकी खराबियां इतनी हुई थी उस दिन कार्यक्रम में, खुद मुझे सुनते हुए बड़ा अफसोस हो रहा था कि ओम पुरी जैसे बड़े कलाकार हमारे कार्यक्रम में लाइव आ रहे हैं बम्बई से, लेकिन बार बार उनका फोन कट जा रहा था। फिर अली अकबर नातिक, पाकिस्तान के बहुत बड़े उर्दू के कथाकार हैं, कवि हैं, वो लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो पहुंचे थे खास तौर पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से दोनों की बात पूरी नहीं हो पाई, और जिसे कहते हैं ना कि मजा नहीं आया, ये मैं स्वीकार करता हूँ। और क्या लिखा गया, उन्होंने
तारीफ की है कि मोहनलाल शर्मा जी ने बड़ी कोशिश की,
बहुत कोशिश
मुद्दे से ना हटके।
एकदम बिल्कुल सही बात है, मोहन जी ने पूरी कोशिश की थी कि बार बार दोनों को मुद्दे पे लाए, और जो हमारे श्रोता है उनकी भी शिरकत बड़ी महत्वपूर्ण रही थी।
तो अगला खत है रामजीलाल घोड़ेला का लून करण सर बीकानेर से, जो कहते हैं बिल्कुल, वो कहते हैं कि दिन भर में विवेचना जो हुई तमिल नाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता के जीवन चरित्र पर, वो बहुत अच्छी लगी। रेहान फजल जी ने बहुत ही लाजवाब ढंग से उनके बचपन से अब तक के राजनीतिक सफर को बहुत ही उम्दा तरीके से प्रस्तुत किया।
इनका नाम एक बार और बताइए।
रामजीलाल घोड़ेला।
रामजीलाल साहब, आपको मैं यकीन करें बताऊंगा और हमारे दूसरे श्रोताओं को भी, कि जितनी मेहनत एक एक विवेचना करने में लगती है, जितनी ढेर सारी किताबें रेहान फजल पढ़ते हैं, और जितने लोगों से बात करते हैं, किसी दिन अगर आप बीबीसी के दिल्ली स्टूडियो आएंगे और रेहान साहब से मुलाकात करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है। घोड़ेला जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
कुछ ही दिनों पहले अमिताभ बच्चन जी के जन्मदिन पर उनका इंटरव्यू आया था,
हाँ,
और उसकी चिट्ठियां अब तक आ रही हैं।
जी, जी, जी।
और तारीफ भी आई है और एक छोटी सी आलोचना भी आई है। विष्णु वर्मा जी ने लिखा है कि साक्षात्कार सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो प्रस्तुतकर्ता थे, जिन्होंने प्रश्न पूछे, शायद वो और थोड़ी तैयारी करके जाते।
विष्णु वर्मा जी कहाँ से चिट्ठी लिख रहे हैं, किस जगह से?
फैजाबाद, उत्तर प्रदेश से।
फैजाबाद के वर्मा साहब, आपने सही कहा, इस तरह की चिट्ठियां और भी हमारे पास आई थी। कई बार ऐसा होता है पत्रकार इंटरव्यू करने जब जाता है तो बहुत तैयारी के साथ जाता है, लेकिन इंटरव्यू करने वाले और इंटरव्यू देने वाले के बीच में किस तरह का संवाद होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैसी केमिस्ट्री बनती है, उससे भी बहुत सारी चीजें तय होती हैं। अमिताभ बच्चन को बिल्कुल नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने के लिए जाना जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि वो बात निकल नहीं पाई जो निकलनी चाहिए थी।
वो इतने इंटरव्यूज देते हैं तो उन्हें लगता है बिल्कुल। अच्छा, अगला खत पढ़ते हैं।
और जो इंटरव्यू अमिताभ बच्चन देते हैं वो अमिताभ बच्चन अलग है, जो पर्दे पर हम जिस अमिताभ बच्चन को देखते हैं वो कलाकार हैं, वो डायलॉग एक डिलीवरी करते हैं, एक आर्टिस्ट के तरह दूसरे कैरेक्टर में चले जाते हैं, इसलिए दोनों में फर्क करना चाहिए।
बिल्कुल।
मैं चलते चलते अगर आपकी इजाजत हो तो पता बता दूं।
बिल्कुल।
तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो पता नोट कीजिए hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच चल रही कलह पर फैसला लेने के लिए पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने अहम बैठक बुलाई। बैठक के बाद किसी तरह की सुलह की खबर नहीं आई। मुंबई के ऐतिहासिक हाजी अली दरगाह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि दरगाह में महिलाएं फिर से प्रवेश कर सकेंगी। इराक की विशेष सेना का कहना है कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट से चल रही लड़ाई में मोसुल के पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उत्तरी श्रीलंका में 2000 अल्पसंख्यक तमिल छात्रों ने उन छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया जो पिछले हफ्ते जाफना में पुलिस फायरिंग के दौरान मारे गए थे। फ्रांस में कैले के शरणार्थी शिविर, जिसे जंगल के नाम से जाना जाता है, पुलिस ने खाली करवाने शुरू कर दिए हैं। शिविर के 1300 से ज्यादा शरणार्थियों को बसों के जरिए बाहरी इलाकों में भेजा जा चुका है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि पिछले 3 साल में 10 लाख से ज्यादा अधिकारियों के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की गई है और 400 से ज्यादा लोग विदेश भाग गए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।